अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टेट एक्यूरेटली कि कितने परसेंट चांस होता है रिलैप्स का आफ्टर अ कोर्स ऑफ अ कीमोथेरेपी, लेकिन कुछ जो स्टडीज़ हुई थी उसके अंदर जो है ना वो ऑन द एवरेज ये देखा गया कि 0.1% पर एनम चांस होता है फॉर अ पॉसीबैसिलरी केसेस फॉर द रिलैप्स, और मल्टीबैसिलरी केसेस में 0.06% पर एनम चांस होता है कि उसके अंदर रिलैप्स हो सकता है। देन फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो सबसे जो क्लोजेस्ट कन्फ्यूजिंग केस होता है ना टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अ रिलैप्स, वो ये होता है कि लेट रिएक्शन। अभी आगे हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि री इन्फेक्शन भी एक चीज़ होती है जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है रिलैप्स से। तो अगर एक पेशेंट हमारे पास सिम्टम्स के साथ आता है ना तो उसमें हमने ये लाजमी पता करना होता है कि या ये रिलैप्स है या तो ये रिएक्शन है या तो ये री इन्फेक्शन है, मतलब वो पेशेंट प्रीवियसली बिल्कुल सक्सेसफुली ट्रीट कर दिया गया था और दोबारा से उसको एक्सोजेनसली एक नया इन्फेक्शन दोबारा से हो गया लिविंग इन एन एंडेमिक एरिया। तो उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन जो है ना वो मोस्ट कॉमनली विद इन 2 ईयर्स होता है आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट, और ये होगा क्यों, अगर हमने शॉर्ट कोर्स ऑफ मल्टी ड्रग थेरेपी दिया हुआ होगा तो वो ज़्यादा कॉमन ये है कि वो रिएक्शन होगा। ट्रू रिलैप्स के लिए एज आई डिस्कस अर्लियर कि कम अज़ कम इंक्यूबेशन पीरियड का अगर गैप वो होना चाहिए और इन मोस्ट ऑफ द केसेज इट इज़ 3 ईयर्स। तो अगर 2 ईयर्स से पहले पेशेंट सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट तो वो मोस्ट प्रोबेबली रिएक्शन होगा, और 2 ईयर्स के बाद या 3 ईयर्स के बाद करेगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली रिलैप्स होगा। इसको आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो रिएक्शन है उसको हमने प्रॉम्प्टली डायग्नोज करना होता है। अगर हम उसको डायग्नोज और ट्रीट नहीं करेंगे देन इट विल लीड टू परमानेंट डिसेबिलिटी और पेशेंट को बहुत ज़्यादा मतलब सफरिंग होगी। लेकिन रिलैप्स के केस में ना हम हमारे पास इतना कोई अर्जेंसी नहीं होती है, हम पूरा टाइम लेके उसको कंफर्म डायग्नोसिस के साथ इन्वेस्टिगेशन के साथ कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली ट्रीटमेंट हमें वही देनी होगी मल्टी ड्रग थेरेपी। लेकिन जो रिएक्शन होगा उसको जल्दी हमें आइडेंटिफाई करना होगा, स्टीरॉयड के साथ ट्रीट करना होगा, दैट विल अदरवाइज इट कैन लीड टू परमानेंट डिसेबिलिटी। री इन्फेक्शन में ये होता है कि इफ अ पर्सन इज कंटिन्यू टू लिव इन अ एंडेमिक एरिया तो उसमें एक्सोजेनसली उसको एक नया इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको फिर हम ये कहेंगे कि री इन्फेक्शन होता है। तो री इन्फेक्शन और रीलैप्स में डिफरेंस ये होता है कि एक एक्सोजीनस है और एक एंडोजीनस है। जो रीलैप्स है वो जो है वो एंडोजीनस परसिस्टर्स की वजह से हो रहा है और जो री इन्फेक्शन है वो एक्सोजीनस न्यू इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। दोनों को डिफरेंशिएट करना नियरली इम्पॉसिबल होता है। सिर्फ एक ही तरीका है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एंडोजीनस बैक्टीरिया था या एक्सोजीनस। उससे हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं बाय बायोलॉजिकल टेक्निक्स जिससे हम स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया को देखेंगे, और ये भी तब हमारे पास अवेलेबल होगा अगर उस पेशेंट का ओरिजिनल पहला इन्फेक्शन वाला कोई सैंपल अगर लैब में पड़ा होगा, अगर वो बंदा जो है वो वॉज अ पार्ट ऑफ अ रिसर्च प्रोग्राम तो पर उससे हम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को देख सकते हैं। अगर तो वो डिफरेंट स्ट्रेन्स हुए तो वो मतलब वो री इन्फेक्शन है, अगर सेम स्ट्रेन हुए तो उसका मतलब है कि वो रिलैप्स है। तो इस तरह से हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंस कोई नहीं है, दोनों को अल्टीमेटली हमने मल्टी ड्रग थेरेपी से ही ट्रीट करना होता है।